सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग राजनीति विज्ञान कह लीजिए या राजनीति शास्त्र कह लीजिए, उसके प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। और आज मैं सीधे सीधे एक प्रश्न पर आता हूं, जो बी सेट का 52nd नंबर का प्रश्न है, 52वां प्रश्न। जनरली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। क्या हो जाता है? वो यह कि आप देखिए कि 51वें प्रश्न का संबंध धन के केंद्रीकरण से है, और फिर मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनसे उसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52nd, उसका संबंध भी धन के अधिकार से ही है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही टॉपिक तो एक ही हो गया, उसे दो प्रश्न पूछे जाएं। लेकिन यहां दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। खैर, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल आपके ध्यान में यह बात ला रहा हूं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है और इसमें पेंच क्या है, और सीधे सीधे आपको इसका उत्तर क्या कहीं मिल सकता है, आप तलाश कीजिएगा। और अगर नहीं मिल सकता तो फिर इसका उत्तर है कहां, यह भी आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। डी, यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार। मैंने जानबूझकर के इस बार जो प्रश्न आपके सामने पढ़कर सुनाया है, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि उसे मैंने बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ा है। इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। स्पेशली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम थोड़े से पॉज के साथ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जब हम थोड़े से पॉज के साथ, इत्मीनान के साथ प्रश्न को पढ़ते हैं, तो उस प्रश्न को फिर समझने की जो हमारी दृष्टि है वो गहरी हो जाती है, और एक ही बार में प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार में प्रश्न को समझा लेकिन अच्छे तरीके से नहीं समझा, दूसरी बार अब आप फिर प्रश्न को पढ़ रहे हैं और अब आपके अच्छे तरीके से समझ में आया, तो जो पहले बार की गड़बड़ समझ थी और इस बार की जो अच्छी समझ थी, वो पूरी तरह से दोनों मिलकर के आपकी समझ को थोड़ा सा धुंधला कर देती है। और जब समझ धुंधली होती है तो सही उत्तर तक पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है, और वक्त की इसमें कमी होती है, आप जानते हैं। तो आइए इस प्रश्न को अब इंग्लिश में सुनते हैं। What is the position of the right to property in India? Legal right available to citizens only. A. विकल्प था ये। B. Legal right available to any person. Fundamental right available to citizen only. D. Neither fundamental right nor legal right. ठीक है, देखिए मैं फिर यहां कहना चाहूंगा कि जो संपत्ति के अधिकार पर ये जो दो प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत कठिन किस्म के नहीं हैं, और जो भी फंडामेंटल, खासकर जो हमारे राइट्स हैं, उनके बारे में आपको बताएगा तो इसकी चर्चा वो विशेष रूप से करता ही करता है। मैं अपने बारे में तो बता ही सकता हूं कि मैंने जो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो संपत्ति के अधिकार को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ऐसा क्यों किया गया, आगे जाकर के इसके क्या इम्पैक्ट हुए, बहुत विस्तार के साथ बताने की कोशिश की है। तो मुझे विश्वास है कि जो उस ऑनलाइन लेक्चर्स को सुन चुके हैं, उनके लिए फिर यह शायद दिक्कत वाला प्रश्न न हो, लेकिन यहां थोड़े से जो शेड्स दिए गए हैं उनमें हो सकता है कि उन्हें कंफ्यूजन हो जाए। वो शेड्स कौन से हैं? देखिए, नीचे वाले तो दोनों को आप हटा सकते हैं, जिसमें सी विकल्प को तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं कि यह मूल अधिकार है। यह मूल अधिकार है ही नहीं, रहा होगा लेकिन अब मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। डी क्या है? यह न तो मूल अधिकार है, बिल्कुल सही है, मूल अधिकार नहीं है, न ही विधिक अधिकार है, न ही विधिक अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि धन आप वैधानिक रूप से भी कमा नहीं सकते, यानी कि धन कमाने पर रोक है, आप कह लीजिए, ऐसा तो है नहीं भैया। आप अगर व्यावहारिक दृष्टि से सोचे तो क्या हिंदुस्तान में, हमारे अपने देश में धनी लोग नहीं है? बल्कि जब शुरू लिस्ट बनाई जाती है दुनिया के कि इतने धनी 50 की लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसमें आप देखिए कि भारतीयों के नाम होते हैं। तो अगर यह विधिक अधिकार नहीं होता तो फिर इनके पास इतना धन आता कहां से? विधिक अधिकार का मतलब क्या है? विधिक अधिकार का मतलब है कि आप धन अर्जित कर सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप जो कानूनी रास्ते हैं उन्हें अख्तियार करें। कानूनी रूप से आपको धन कमाने का अधिकार है और कानून उसकी रक्षा भी करेगा, बशर्ते कि आपने कानूनी तरीके से धन कमाया हो। तो गैर कानूनी धन क्या है? देखिए, गैर कानूनी धन आप जानते हैं, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, जो काला धन है वो गैर कानूनी धन है, वो बकायदे उसे जब्त किया जा सकता है। लोग ब्लैक मार्केट से कमाते हैं, जिन पर आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं उससे कमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इकट्ठे करते हैं, उसके बहुत से अलग अलग सोर्स हैं। तो लीगल राइट तो है, तो डी को भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कह वो ये रहा है कि ये विधिक अधिकार भी नहीं। अब हमारे पास बच जाता है ए और बी, और सच पूछे तो इसी में आपको उलझाने की कोशिश की गई है। ए एंड बी, यह विधिक अधिकार है, ठीक है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो केवल शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है और किसको प्राप्त नहीं है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, वे हमारे देश में तो जो रह रहा है वो नागरिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि बहुत से शरणार्थी भी रहते हैं, विदेश के लोग भी आकर के रह रहे हैं ना, बकायदे यहां व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, इसलिए यहां दिया कि जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। सामान्य तौर पर जब आप जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा कि हाँ यार, अब धन का जो विधिक अधिकार है वो तो केवल नागरिकों को ही प्राप्त होगा, कानूनन तो नागरिकों को ही होगा, जो विदेश के लोग हैं उन्हें आप कैसे इतना बड़ा अधिकार दे सकते हैं। लेकिन जब आप बी विकल्प पढ़ेंगे तो उसमें यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि सिटीजन्स प्लस जो मैंने अभी आपको बताया इन्हें भी प्राप्त है। और यहां जो नागरिक और किसी को भी प्राप्त है में जो अंतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि वे विदेशी जो भारत में आकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं। आप सुनते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कि फॉरेन के लोग भारत में इन्वेस्ट करें। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप देख रहे हैं कि भारत में दुनिया भर की कंपनियां आ गई हैं, मोबाइल की आप कंपनी देखिए, गाड़ियों की आप कंपनी देखिए, अलग अलग तरह की कंपनियां भारत में आ गई हैं जो विदेशों की हैं। ये विदेशों की जो कंपनियां हैं ये भारत में आकर के बकायदे फैक्ट्री लगा रही हैं, फैक्ट्री से वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, वस्तु का उत्पादन करके बकायदे कमाई कर रही हैं। तो जो कमाई कर रही हैं वही तो धन है। तो अगर इन्हें इस कमाई का अधिकार नहीं होता तो ये विदेश से आकर के यहां आप फैक्ट्री क्यों लगाते? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लोग हैं विदेश में रहने वाले, ये यहां आ रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, बकायदे वो अगर नौकरी भी कर रहे हैं किसी दूसरी भारतीय कंपनी में ही सही या विदेशी कंपनियों में, तो उन्हें सैलरी मिल रही है। और जब ये कमाई कर रहे हैं और जो इन्हें सैलरी मिल रही है, इस पर जो भी सरकारी कानून है कि आपको इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, फैक्ट्री के लिए कि आपको इतना कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा, वो सब दे रहे हैं, कानूनन दे रहे हैं। तो फिर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसे हम यहां धन कह रहे हैं, क्या उस पर प्रतिबंध है कि वो ऐसा नहीं कमा सकते? और अगर ऐसा प्रतिबंध आप लगाते हैं तो आप ये बताइए कि ये लोग क्यों आएंगे? जब इस तरीके से आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो दूसरा वाला जो विकल्प है, विकल्प बी, कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ए को माना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर विदेशियों को तो हम ये अधिकार दे ही नहीं सकते। तो तुरंत आपके पकड़ में यह विकल्प आ जाएगा कि नहीं, बी। यहां मैंने इतना विश्लेषण किया क्योंकि बाद में मुझे मेल्स से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास इतना समय है वहां कि हम इन सब पर विचार कर सके, इतना टाइम होता ही कहां है? बिल्कुल इतना टाइम तो नहीं होता, अगर आप इतना टाइम लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो फिर आप करेंगे क्या? दोस्तों, जो प्रैक्टिस की बात कही जाती है वो यही काम करती है। क्योंकि जब हम चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लगातार हम अलर्ट रहते हैं, यानी कि सजग रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे दिमाग की जो क्षमता है, हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमता है, क्षमता से भी अधिक मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है और वो फटाफट अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल करके हमें देने लगती है कि नहीं ये होगा, ऐसे सोचो, ऐसे करो। मैं आपसे एक प्रश्न कहना यहां चाहता हूं। आप शुरू में साइकिल चलाना सीख रहे थे या बाइक चलाना सीख रहे थे, या अपनी माँ से पेरेंट्स से अपने पूछिए कि जब आप चलना सीख रहे थे, या आपको याद ही होगा जब आप भाषा सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं, या ये अ ब स अ आ ई ई क ख ग घ अ ङ्ग सीख रहे हैं, सीखने के बाद जब आप किताबों में इस लैंग्वेज को पढ़ रहे थे, उन दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप साइकिल चलाते थे शुरू में, कितना डर लगता था, एक एक अक्षर आप कैसे बोला करते थे, यहां तक कि आप लिखते कैसे धीरे धीरे थे, उसमें भी अच्छे से नहीं लिख पाते थे। आज आप किस तरह से साइकिल चला रहे हैं, किस तरह से आप बाइक चला रहे हैं, किस तरह से आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, किस तरीके से आप भाषा बोल ले रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, कितनी तेजी के साथ आप लिख रहे हैं, यह सब कैसे हुआ है? आपके पास इसके सिवाय कोई उत्तर नहीं है कि यह सब केवल प्रैक्टिस से हुआ है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर करके अपने दिमाग को इस तरीके से बना दिया है कि वह अक्षर को पूरी तरह से न देख करके शुरू के एक दो अक्षर देखने के बाद ही वो पूरे के पूरे शब्द का बता देता है, और फिर फटाफट आप पूरे वाक्यों के शब्दों को पढ़ करके उसके अर्थ समझ लेते हैं। यह दिमाग ने किया है। तो अगर दिमाग वहां ऐसा कर सकता है तो क्या आपको लगता है कि यहां नहीं कर सकता? यहां भी कर सकता है। और सच पूछिए तो इसे ही सिविल सर्विस के लिए की जाने वाली मेहनत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।